प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने यह कहकर राष्ट्रीय कार्यबल यानी नेशनल टास्क फोर्स बनाने की मांग को खारिज कर दिया है कि एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत को रोकने के लिए सरकार पहले से ही कदम उठा रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी सरकार से 15 पॉइंट्स की योजना अपनाने को कह रही है, जिसमें एक राष्ट्रीय कार्यबल बनाना शामिल है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कैबिनेट बनाने का समर्थन किया है। एंथनी एल्बनीजी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने यहूदी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई और फंडिंग दी है। 34 वर्षीय एंजेलो लोरास पर शनिवार रात ईस्ट मेलबर्न की सिनेगॉग में आग लगाने और जान जोखिम में डालने का आरोप है। उसी शाम कुछ प्रदर्शनकारियों ने इजरायली रेस्टोरेंट मेजनॉन में खाना खाने वालों को परेशान किया और वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन्स ने मांग की है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में एल्गल ब्लूम को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। साउथ ऑस्ट्रेलियन सांसद सारा हैंसंग यंग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रभावित समुदायों की मदद के लिए अधिक संसाधन जारी करने और इस आपदा पर रिसर्च के लिए फंड देने की अपील की है। उनका कहना है कि जहरीली एल्गे अगले 18 महीनों तक बनी रह सकती है और इससे मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। मार्च में एल्गे फैलने की शुरुआत से अब तक साउथ ऑस्ट्रेलिया मरीन मोर्टैलिटीज प्रोजेक्ट के तहत लगभग 8,000 समुद्री जानवरों की मौत दर्ज की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए व्हाइट हाउस में डिनर आयोजित किया। दोनों नेताओं ने अपने शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों यानी टॉप सिक्योरिटी एड्स के साथ मिलकर अमेरिका समर्थित गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर चर्चा की। इस योजना में 60 दिनों का संघर्ष विराम यानी सीज फायर शामिल है, जिसके दौरान हमास बंधकों को रिहा करेगा, इजरायली सेनाएं एक बफर जोन तक पीछे हटेंगी और गाजा में ज़्यादा मानवीय सहायता भेजी जाएगी। दो राज्य समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावना पर सवालों के जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस क्षेत्र में शांति लाई जा सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने एक के बाद एक कई देशों में शांति स्थापित की है। एक और खबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वो यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजेंगे। ये घोषणा तब हुई जब पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने कीव के लिए कुछ हथियार भेजना रोक दिया था। रशिया ने 3 साल की इस जंग में अब तक के सबसे बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन द्वारा हथियारों की आपूर्ति रोकना कीव के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 बिलियन से ज़्यादा की सैन्य मदद दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को जारी नहीं रखा और जनवरी में पदभार संभालने के बाद से कीव के लिए कोई नई सैन्य सहायता की घोषणा नहीं की थी। स्कूल की छुट्टियों में सफ़र शुरू होते ही एविएशन अथॉरिटीज़ यात्रियों से सुरक्षित तरीके से सामान पैक करने की अपील कर रहे हैं, खासकर लीडियम बैटरियों को लेकर सावधानी बरतने के लिए। सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी यानी कासा ने हवाई यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए 20 भाषाओं में सुरक्षा सलाह यानी सेफ्टी एडवाइस जारी की है। अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी पिप स्पेंस का कहना है कि अब ज़्यादातर यात्री कम से कम 4 ऐसे डिवाइसेज अपने साथ ले जाते हैं जो लीडियम बैटरी से चलते हैं, लेकिन ये लोग लीडियम बैटरी से जुड़े खतरों से अनजान हैं। उनका कहना है कि अतिरिक्त लीडियम बैटरियां और पावर बैंक आग का गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और इन्हें कभी भी चेक इन सामान में नहीं रखना चाहिए। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसे लीडियम बैटरी वाले डिवाइसों को हैंडबैग या चेक इन सामान दोनों में रखा जा सकता है, बशर्ते बैटरी सुरक्षित हो और डिवाइस बंद हो। नई बहुभाषी सुरक्षा जानकारी caasa.gov.au/packright यानी PACKRIGHT/resources यानी RESOURCES पर उपलब्ध है। और अब खबर भारत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 7 जुलाई 2025 को बताया कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा, हमने यूनाइटेड किंगडम और चाइना के साथ समझौते कर लिए हैं और भारत के साथ हम एक समझौते के करीब हैं, जिन देशों के साथ समझौता नहीं हो सकता उन्हें हम बस एक पत्र भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब अमेरिका ने थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और जापान समेत 14 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है जो 1 अगस्त से लागू होंगे। अमेरिका और भारत के व्यापार वार्ताकार टैरिफ कम करने से जुड़े समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को लेकर अभी बात नहीं बनी है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।